open once she has to find out what to do.
दुर्गा ऋषि जी वहाँ पर पहुँचे, दुर्गेश महाराज जी के पास में गया, बोले आज मैं आपका अतिथि हूँ, आज हमारा बड़ा सौभाग्य है। दुर्गेश महाराज जी बोले आप बिल्कुल स्कूल में स्नान करके पढ़ाइए, तब तक हम लोग आपकी रसोई की व्यवस्था करने को खाते नहीं। यदि हम लोग आतिथ्य सत्कारिता नहीं करेंगे तो ये जला करके खत्म कर देंगे। इसलिए द्रौपदी के पास में गए, बोलिए प्रिय द्रौपदी तुम सब कुछ करने समझ, अब हम लोग तुम्हारे आश्रम में आए हैं, इनका स्वागत कैसे होगा, आप भोजन कैसे होगा, आप व्यवस्था जैसे रोज करती है सबके लिए। उन्होंने कहा आज मैं व्यवस्था क्या करूँ, मैंने तो पटलो ही मांग बच्चा तो उल्लास किया है। उसने कृष्ण को उठाया, हे कृष्ण अब तक हमें हमारी लाज रखते, आज आपके हाथों में हमारी लाज है, नहीं तो हमारे पांचों पांडव लोग मारे जाएंगे। आपको इस व्यवस्था की उतारा वो कृष्ण कैसे रुख सकते थे, प्रकट हो गए वो सुनाते हैं जरूरी बड़ी भूख लगी है, दिन पर कुछ नहीं खाया, कुछ फिर आप खाने पर बातचीत कर देखिए, इसी के लिए तो आपको बुलाया, हमारे पास में कुछ नहीं। मैं कृष्ण बोली जब मैं कुछ नहीं जानता, पहले हमको खिला करके सब तो रुको, इसके बाद में जो कुछ हम सुने। द्रौपदी ने कहा ये प्रभु दुर्वासा जी आए हैं साथा जी आगे क्यों सही, और हमने बटोरी मार करके उल्टा रखी है, अब आपको उपाय कीजिए, अभी स्नान करके जीवन कुंभ से अभी आ रहे हैं। कृष्ण भाई पटलो जाओ तो आप उसमें कुछ नहीं है, अरे लाओ तो सही। बात आसानी से बटलो ही दे आए, उन्होंने छान करके ऐसे देखा एक सात का तीन का सात लगा हुआ था और कुछ नहीं था। पहले कहते द्रौपदी के आंखों से वो जल हो गया, कृष्ण ने अपनी अंगूठी के नख से उसको नीचे से निकाला और ऐसे करते पानी को लाओ और एक लोटा पानी पी करते बेकार के शादी जात में सारे विश्व का पेट भर गया, विश्व का पेट ऐसा भर गया जो बेकारने लगे। और दुर्गाचा ने कहा अम्बरीश की बात याद है कि हम उसे भी बड़े भक्त के पलने पड़े हैं, न जाने की बात याद रख सकते, इस बार हमारी रक्षा नहीं करेगा, इसलिए एकदम आगे वहीं से एकदम भाग करके चले गए करके ऋषि रोग में सबों रोग में जहाँ पर कुछ पलायन इत्यादि नीचे है वहां पर भाग करके चले गए। किसी प्रकार से रक्षा एक ये घटना है, और भी एक घटना हुई, दुर्योधन ने देखा कि एक बात करनी चाहिए, पांडव लोग अभी वहां पर हैं और कृष्ण अंदर भी धर्म की बात करते हैं, इसलिए अपनी सारी सेनाओं का को लेकर विकट पिता इत्यादि सारे लोगों को लेकर के आए और लेकर के विमल कुंड के पास ही एक तरफ में पांडव लोग दूसरी तरफ को उसने अपना सैन्य का सीमा लगाया सेना मन सब, और वहां पर उत्सव होने लगा, खान पीन रात रंग रात नाच बाजे गाजे सब होने लगे और बहुत संग करना चाहिए और अपने सेना से कुछ जस्ता की था। उस समय में इंद्र ने कहा अपने गंधर्वों को इतिहास नाम का उसे सेना पर उनको कार्य क्या बताओ, ये अर्जुन भीम पांडव को युधिष्ठिर इत्यादि को अपमान करने के लिए यहाँ पर आया, कहा ये भिक्षा मान करके जीवन में भी बात करते हैं और उनको अपमानित करने के लिए आया था, जब भगवान को पान करके जाओ बस वो अपनी सेना को लेकर के और वहां पर उपस्थित हुए और वो युक्त हुआ। उस समय भीष्म कर्ण दुर्योधन इत्यादि सबको हरा करके सबके सामने और उनको पकड़ लिया दुर्योधन को और पकड़ करके आकाश बाबू से हुए और वो चीज आने लगा हाय हाय रक्षा करो कोई कोई रक्षा करने वाला नहीं जिसे कि महाराज पार्टी में उधर में थे देखो तो ये रोग है दुर्योधन हमारा भैया है ना दुर्योधन हमारा भैया है हमारे उनमें उसमें लड़ाई है ये तो दूसरा की आक्रमण करेगा तो हम 105 भैया हैं 102 और 5 है हमने कुछ को थोड़ा सा नहीं समझता है कि ये करता है सिर्फ दूसरों के लिए तो हम 105 है तो क्या हो सकता है मैंने कहा मैं नहीं जाता आप काम लेके लेना प्रभु जी आप अपना ये बचन अपने पास में रखिए उन्होंने देखा जी अर्जुन तुम जा सकता है तो आगे हम लोग को अपमान करने के लिए हमको मारने के लिए हमें बीच देने के लिए हमारे को अपमानित करने के लिए क्या ये दिन रात के वंदना कर रहा रहता है और मैं उसकी रक्षा करने जाऊं मेरी मेरी आप ही करो काम करो उनके काम लेते थे अर्जुन गए और धनुष मार लिया गंगा को ना देखो तो ये विचित्र घटा हम कहा इसके शत्रु को पकड़ने के लिए मारने के लिए रेल सजा देने के लिए और ये अर्जुन और स्थिति यही कर रहे हैं उन्होंने गंधर्वों को मार करके हटा दिया और उनको छोड़ दिया वो वहां से नीचे और पैर ऊपर गिरने लगा और भी ऊपर पहले तो कोई रक्षा का उपाय था जब गिरने लगा अर्जुन ने ऐसा बाण मारा कि एकदम गिर गया और उनको भी ऐसे एकदम और उनको लेकर के युधिष्ठिर महाराज जी के पास ऐसा बनाया कि जब करेंगे तो कहां करेंगे युधिष्ठिर के पास में बड़ा व्यतीत हुआ तो एक जीवन की अपेक्षा मर जाना हमारा अच्छा था और इसका बदला किसी भी हम देंगे दोस्तों को रक्षा करना सांप को रक्षा करना बिच्छू को रक्षा करना माने क्या है उसको प्यार से लेकर के अंतिम में रखो छाती में रखो ना प्यार से सांप को तो सांप क्या करेगा प्यार करेगा ना ये दुर्योधन ऐसे तो यहाँ पर फिर लाया युधिष्ठिर महाराज ने उसका बंधन छोड़ करके उसे दुर्योधन कहा था आइए पठा दिए खिलाया पिलाने के लिए चेष्टा किया आपकी इसके बाद में कभी तो किया वो चला ये घटना भी यही करती इसी तरह से और भी घटनाएं हुई यहाँ पर ये सब तो बताया यहाँ पर एक जसोदा जसोदा कौन बनाए जसोदा जी की अरे पिता जी का स्थान कृष्ण मामा का स्थान ये रामेश्वर ये विमल कुंड के पास में है फिर बात रामेश्वर जब हम जाते हैं तो बीच में पड़ता है यहाँ पर जो दादी जब थी यही पर अभी भी विवाह के बाद भी कृष्ण को लेकर के आती थी और कृष्ण उनके साथ में आते ननिहाल मैंने मामा का था उसी जगह में शेष बांध रामेश्वर शेष बांध रामेश्वर नहीं किया कैसे चले गोपियों के समाज में कृष्ण आते
गंगा जी पिता का कहना
बोल रहे हैं तो वहां पर कृष्ण गोपियों के समाज में खेल रहे थे विलास कर रहे थे कृष्ण बेकार थे तो राम जब राम बना था ना राम और अवतार में हमने सेतु बांध दिया भैया आप वही राम है तो मैं वही हूं हमको विश्वास नहीं है भाई कृष्ण राम के सेवकों ने पुल बांध दिया तो अभी बंदरों को हुक्म दीजिए तो ये बांधे कृष्ण ने बांध उठाई और बजाई और हजारों लाखों बंदर मार दिए गए और मैंने कैसे उन्होंने समझा और कहां कहां से पहाड़ से पर्वत को ले आकर के वो बीच में एक पानी पानी अभी जाने से बैठे और उसको पुल बना दिया और पुल बनाने के बाद में बांधरी से ना पुल गर्ने लोग उधर में गंगा जल का देखने की त्रिकुट के ऊपर में बसा हुआ है और उधर में फिर बाल रामेश्वर जी का स्थापना की गई है। ये सब लीलाओं को कृष्ण ने गोपियों को ये बताया कि तो गोपियां हंस में लगे वो कहेंगे तुम क्या कर सकता है, तुम्हारे घर में बाबा ने जो नारायण की उपासना की है और उसके भक्त नारायण जो तुम्हें कभी कभी आ जाते हैं वो नारायण कर रहे हैं उनको विश्वास नहीं। ये भी लीला और भी यहाँ पर गोपी का सुंदर है। कुछ लोग समझते हैं कि ये कृष्ण सखाओं के साथ में यहाँ पर बाल्य लीलाएं थी केवल और नित्य कुमार रामेश्वर की ही लीलाएं थी, तो ऐसा नहीं। यहाँ पर गोपी का सुंदर है, एक है राधा रमण कुंड, एक है जल विहार कुंड, एक है रंगिनी कुंड, एक छबिला कुंड, एक छबिली कुंड, एक विवल कुंड। विवल मैंने क्या, जहाँ राधा कृष्ण मिल करके विवल होकर के प्रेम का रूप धारण करके जल रूप धारण करते वो विवल कुंड। यहाँ पर मान सुंदर है जहाँ पर की राधी क्या भी कभी है जो कहे बिल्कुल मान करती थी। यहाँ पर ललिता कुंड है, विशा का कुंड है, इसके अतिरिक्त राधापुर साजी है, इंदू लेखा स्थल, इंदू लेखा रंगी इत्यादि जो अष्टतियां उनमें से। यहाँ पर चंद्रावी जी का भी कुंड है, यहाँ पर श्रृंगार तीर्थ है, राधापुर सारणी है, 64 चौकियों का अलग अलग 64 कुंड है। इसके अतिरिक्त भारतवर्ष में जितने बड़े बड़े तीर्थ हैं शेख बांध रामेश्वर तो बदलाया है ही है, बद्रीनाथ को बद्री में देखा, केदारनाथ को देखेंगे केदारकुंड मणिकर केदारकुंड पर्वत और इसके अतिरिक्त शेख बांध रामेश्वर बद्रीनारायण और जगन्नाथ क्षेत्र मैंने जितना कृष्ण भारतवर्ष के जो बड़े बड़े तीर्थ हैं पुराना कृष्ण का तपस्या करने के लिए यहाँ पर कुंड के रूप में कोई भी बात नहीं, क्योंकि राधा कृष्ण की भक्ति कभी क्या सभी लोग यहाँ तक बामन देव परशुराम इत्यादि जितने हैं इन लोगों का भी कोई फिर दुनिया पर है, वो लोग भी यहाँ पर आए थे। गोमती द्वारका बुद्ध भगवान बामन विश्वनाथ काशी विश्वनाथ रामेश्वर बद्री इत्यादि सभी लोगों के पूजन यहाँ पर है। इसलिए कृष्ण की मराठा जी का विहार स्थल और सब जितने भी तीर्थ हैं यहाँ पर रहते हैं, यहाँ पर किसी किसी की परिक्रमा वहाँ पर 7 दिन साल करके 7 दिन परिक्रमा हम लोग एक दिन में समाप्त कर दिया, चारों तरफ में पानी भरा पड़ा था और रास्ते में आते समय हम लोगों ने नंद गांव की चरण पहाड़ी का भी दर्शन किया जो अपरूप वहाँ पर उनको साक्षात गंगा सत्य के भाव में रामचंद्र आप लिए
बताया कृष्ण प्रसाद बोल रहे थे गवर्नमेंट हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम राम महाराज जी एक्सप्लेनिंग सो मेनी पास टाइम्स विच टुक प्लेस इन गंगा कोट यू हैव हर्ड अ फ्यू ऑफ देम ऑलरेडी नाउ ही इज टेलिंग अस दैट वेल Durvasa Rishi went to Duryodhan and Duryodhan welcomed him very warmly, gave him very nice prasadam. Durvasa is expansion of Lord Shiva. He is Ashutosh. He becomes very easily pleased. He says, Duryodhan asked for any benediction. Duryodhan always had one point program, how to disturb his brother's Pandav. He wanted to destroy them. So he thought, if somehow or other Durvasa Rishi gives curse to them, then everything, he will win the battle. So he knew it, that Draupadi had a pot which is given by sun god to her, and it has got unlimited power. She can see numerous people by that pot. But if finally, if she eats and washes that pot, then this pot won't give any food more. Therefore she said, Duryodhan said, look, my brother is living in exile near Vimlakon. I request you, you should also go to his house. Give him also benediction. He is not straightforwardly saying that curse him, but very diplomatically saying, but I request you, you go there in the afternoon, just when Draupadi has finished her food. So, being pleased from Duryodhana and Durvasa went there,
you know, in another way, like your tutor.
Well, then, Durvasa, so when Durvasa Rishi went there and found Yudhishthira, he said, I have come with 60,000 of my disciples and I want you to host me. Yudhishthira said, okay, no problem, you go to Vimlakun, have a bath, come back and I will feed all of you. But inside he knew that how he will feed. He was in anxiety also. Then he went to Draupadi. Maharaj is saying that as if he took shelter to Draupadi. He went to Draupadi. Draupadi, we are in problem. You have to save us. You always save us. What is the problem? Durvasa Rishi has come with 60,000 disciples and he wants that we should feed him. Draupadi said, but I have already taken my food from that magical pot and I have washed it. Now I can't do it. Yudhishthira said, I know it, but we have come to you. You can save us. Then Draupadi had no other way. He remembered Krishna. Krishna came there. And the moment Krishna came there, he said, oh Draupadi, I will listen to you. Later on, first give me some food, I am very much hungry. And Draupadi said, that is the problem, that I don't have food. I have called you that I don't have food, and you are asking for the food, how can I give you food? Then he said, no, you bring your, that pot, you know, in Hindi it is called bataloi, you may remember this now. You bring that bataloi. Krishna, I am already telling you, I have just bought that bataloi, there is nothing in that. Krishna said, okay, I am asking you, you bring that patloi, let me check it. Then Krishna checked that patloi, somehow or other, one very small leaf of the sag vegetable that remained there, and Krishna, he scratched it with his nails and took it, and then he ate it and said, won't you give me water? Then she gave him water. Krishna drank water and said, drip towards me. I am fully satisfied. The moment Krishna said, I am satisfied, whole universe got filled. As each and every person of universe got his belly filled. And then Durvasa Rishi found that his stomach was filled. His disciple said that we are also having filled stomach. What happened to us? Then Durvasa remembered, I think we are today having a conflict with another disciple, another devotee of Lord. I remember once I had a clash with Ambarish Maharaj. At that time I had ego and I had to face such a bad circumstances. And I don't want to repeat because these five Pandavas are more close to Krishna. So somehow or other I have to escape and save my life. He ran away from there from his kite path and went to the Rishi Lok, where the blind Rishi and all they are staying. So this pastime took place here. Another time, Duryodhan wanted to disturb Pandavas. How come? Pandavas were living in exile. They were just begging their food or bringing some vegetables or fruits from the jungle and living a very, very austere and simple life. And just to tease them, Duryodhan, at the other bank of Vimalakund, he said Vimalakund is really very famous court for the pastimes of Pandavas when they were in exile, they were in jungle. So at one side bank, Pandavas were living, on the other bank, Duryodhan went there, he pitched his tent with royal way, and he was celebrating every day. Bhisham Pitama and Karan all were there, eating all delicious foods, and music was there, dancing and everything, just to see Pandavas. When Indra saw this thing, Pandavas were not disturbed, frankly speaking, it appears. But when Indra saw him, and that he wants to disturb Arjuna and Pandavas, and he was in favor of Pandavas, at that time, Indra sent his
commander-in-chief.
He sent his commander-in-chief, Chitrasen. Senapati, in Hindi he is called Senapati. Go and bring Duryodhan here. I will give him a lesson. Then commander-in-chief of Indra with his army went to Duryodhan. And they had a very curious fight. And Duryodhan was defeated. They caught Duryodhan and they bound Duryodhan. Chitrasen was taking Duryodhan from earth to the heavenly planet, to the sky path. Meanwhile, Duryodhan was crying, "Save me, save me." And when Yudhishthira heard his voice, he saw that his brother Duryodhan is going and being caught by Chitrasen. Then he asked him, "Please go and save him." He said, "Please don't say this thing to me. I can't do this. Your order is always honorable to me, but don't tell me this thing. I can't follow your this order. I owe my obeisances to your this order from the distance only." Then he said to Arjun, "You do it." Arjun also was not ready for it, but Yudhishthira became little strong on him, and Arjun was more obedient. Then Arjun went there. He had a little fight, and he defeated all the commander-in-chief and army of Indra, and commander-in-chief was saying, "Look, we have come here in favor of Arjuna, and on the contrary, Arjuna is fighting us against Duryodhan." And they were very much surprised anyway. Then what happened? Because they have already taken Duryodhan to the sky path very high, and they left Duryodhan. Now Duryodhan was falling down. At that time he was in bounded condition and was going to Indra, he was crying. Now he was going to fall down and was going to die. At that time Arjun, very cleverly by his arrow and bow, made a spear. And on that spear, Duryodhan came down step by step, and the final step of that spear came at the feet of Yudhishthira Maharaj. And when Duryodhan came down, he found Yudhishthira standing in front of him. He was very much ashamed. He was ashamed and became angry. Maharaj is giving here a very interesting point. Duryodhan was not feeling any gratefulness for Yudhishthira and Pandava that they saved him. On the contrary, he became angry because he said that they have saved me not, they have insulted me. Now they have become on the superior position. Within himself, he was becoming more and more angry and thinking that somehow or other I am
not outwardly angry. Outwardly he was like this.
Within,
fire was burning.
So this part I took place. Maharaj is giving here very important Siddhant that if we see serpent or bichu, scorpion, it will not help us. Suppose if a scorpion is lying outside in cold and you take it and put it, try to put it inside your arm to save him and give him warmth, what he will do? He will say thank you, please. Will he say thank you? Rather he will sting. So another pastime Maharaj is telling Rameshwar, Ketubandh Rameshwaram. Once Krishna was having pastimes with his gopis and boasting it to them that, look, I have done so many things in my previous life. Once I was Ram and I killed Rama, this and that. Gopis came testfully to them. Oh Krishna, you are Ram once upon a time. You know Ram, monkey, army, they just created constructed a bridge over the sea. Can you do little bit of it? Krishna said, why not? Krishna just played over his flute. And the moment he played over the flute, so many monkeys came. They started picking up so many heavy stones and mountains like things. And they constructed the bridge. There is a very big pond. Once Maharaj has already taken to us and we found that the stones were there, still, and bridge is there. And this way bridge was constructed. But in this Madhurya pastime, still gopis are not ready to accept him as supreme personality of Godhead. That time Maharaj told us that if the gopis started teasing Krishna, oh, you say that you are God. What you have done? You have not done anything. It is monkeys who have constructed this bridge. And today Maharaj was saying that Gopi said, oh, you have not done anything. Only your father worships Narayan so much that sometimes you show such extraordinary things. Otherwise you are fit to do nothing. Then Maharaj is also telling that this place is Nanihal of Krishna. Nanihal means, you know, where the mother's parents live. So Yashoda Ma used to come here with Krishna when he was child. And there is a Yashoda Kund also. Some people say because Krishna used to come here during his childhood and he has performed his childhood pastimes over Kamyavan, but it is not fact. Maharaj is quoting so many kunds here which are present. One is called Gopika Kund, means where the gopis are performing their pastimes with Krishna. One is called Radha Raman Kund. One is called Chabila and Chabili Kund. You know Chabila and Chabili? The beautiful boy is called Chabila and beautiful girl is called Chabili.
They are Radha
and Krishna. Just we have seen Arsana Kund and Naval Kund, like Chabila Kund and Chabili Kund. Vihavl Kund. Vihavl means?
Vihavl.
Vihavl. Vihavl. Getting overwhelmed in love. And Lalita Kund, Vishakha Kund, Indra Dekha.
When Prabhupada was introduced to me, I said, doing so much vilas, then it used to be beautiful. Joyful.
Overwhelmed in love. So, Indra Dekha itself. Out of Ashtasakhi, one is Indra Dekha. Then Ravali Kund is also here. 64. Sakhis have their different kunds here. And there are many other. One thing Maharaj is saying, all the pilgrimages of India, they have come here in one form or other because knowing that this is very exalted place and they are performing their bhajan and austerities because they understand the real position of Krishna. And different incarnation of Krishna is also found here in different ways. We have already seen Badri Narayan. We have talked about Rameshwar Setubandh. We have already said about Kedarnath. So there are these pilgrimages. Dwarka Gopi. All the pilgrimages of India, they are here. They are not here because they are also supreme, but they are here because they understand that this place is supreme, so it will be beneficial for them to perform their bhajan and austerity here. Then one thing is there, that this place is so vast that we cannot cover it in a day. Most of the parikrama people, when they come here, they pitch their tent here for at least 7 days, and only then it is little bit possible to visit all the places, which we try to do only in a day. Our purpose is that all those Vaishnava people and others, they should not get too much troubled also, because to stay there is really troublesome. I remember 3 years before we stayed in Vimla Kund and all, there was no room, there was no latrine, there was no bathroom, and everything has to be done like that. And I think Maharaj is giving grace to us now that he is making our parikrama so easy as well as fruitful also.
God Father all Master Vietnam, Bhakta Vietnam of Purva. यही पर पाचा पांडव में जब भी परवास में थे तो रोज शिक्षा करने के लिए जाते थे. My father is there here. They used to wait. जो जो दूर दिया नहीं थे. उस समय में एक दिन के पाचा पांडव निकले. ब्राह्मण के देश में जब कवि लेकर के ब्राह्मण का देश बनाया जो कोई नहीं समझे गुप्त और अंतिम अंतिम समय में अब जो दो एक दिन ही बाकी था गुप्त दिवस का तेरा में एक वर्ष वाला जब उसके अंदर में पांचों फोन लोगों को दुर्योधन पता लगा लेगा कि यही पांचों लोग हैं तभी 12 वर्ष और 1 वर्ष 13 वर्ष के वनवास जाना पड़ेगा. दुर्योधन इत्यादि उनको बड़ी सावधानी के साथ में छोड़ रहे थे और ये लोग छिप रहे थे. तो उस समय में पांच पांडव शिक्षा के लिए गए. लोग देख रहे थे ब्राह्मण राजकुमार युवा है कोई वापसी में दुर्गत नगर है वहां पर पहुंचे और शिक्षा मांगने के लिए वहां पर द्रौपदी विकास मंत्र हो रहा था. एक बहुत लंबा खंभा बड़ा हुआ था उसके ऊपर में चक्र था चक्र के ऊपर में एक मछली मछली के आंख में एक दिया लगा दिया और नीचे तेल रख दिया गया था और चक्र घूम रहा था. लोग कोई तेल में परछाई दे करके और ऐसे बाण से ऊपर मछली के आंख में लगाएगा हमारे भगवान क्या वही द्रौपदी के साथ में विवाह कर सकता है. उस समय में जितने बड़े बड़े दीप थे वो सब लोग वहां पर आए. उस समय सारे वीर लोग हार गए. विषम पितामह उठे मैं मारूंगा. उस समय में द्रौपदी जी ने कहा आप विवाह करेंगे तो उसकी गोती बंद हो गई. आप बैठिए बूढ़े आदमी यदि विवाह नहीं करना है तो बैठिए. इसके बाद में जो दुर्योधन तो हार ही चुके थे कारण था राजा मैं देश करूंगा. उन्होंने कहा कि तुम किसका पुत्र है मैं खत्रियों के जात में जाति करूंगा और मुख्य वंश में शुद्ध पुत्र जो शुद्र है उससे मैं शादी नहीं करता क्योंकि आप बैठी है. वो भी लज्जित होकर के वैद्यादी तो इस अपमान का बदला ले लूंगा किसी ने कोई बैठ गया. बदिन में कृष्ण भी छिपे हुए देश में थे. बदिन ने कहा भाई अपने हकों को सम्मान देना है हम नहीं हमारा कोई फसा है क्या. उस समय भीम और सब लोगों ने कहा अर्जुन को अर्जुन नहीं पूछ रहे थे किंतु कृष्ण ने कहीं से इशारा किया और अर्जुन समझ गए अपने यार दोस्त की बात को मित्र की बात को और कुछ तो राजकीय वेश तो है नहीं ब्राह्मण देश जैसा बना रखा था. उन्हें और वहां पर उपस्थित हुए. उपस्थित होने पर खल रही मछली ये ब्राह्मण जिसको भीष्म पितामह कर्ण और बड़े बड़े वीर लोग नहीं कुछ कर सके और ये पूछ रहा और लोग सबड़े गए वीर हैं और ये एक छोटा था जो श्याम श्याम रंग का कृष्ण का रंग बताया और फंस बाढ़ हाथ में दिया अपने करके वहां जब खड़ा हुआ खड़ा होने के बाद में चक्र चल रहा था परेशानी देख करके और बाण ऐसा मारा कि एकदम आंख मछली की आंख की पुतली में जो काला है उसमें लगा और मछली बैठ करके चारों तरफ में सारी जल गई। महाराज जो बहुत बड़े प्रसन्न हुए और प्रभु के लिए महाराज माला लेकर के और फिर इसमें बातें हैं वो लड़ाई की बात थी जैसे हम इसे ठीक करके लेंगे किंतु कोई भी कृष्ण के भगवान जी के डर से नहीं उनके सामने आया। ये लोग द्रौपदी जी को लेकर के दुल्हन को लेकर के कुंती के पास में आए। कुंती उस समय रसोई बना रही थी कहे भैया भैया आज बड़ी अच्छी भिक्षा मिली है ये तुमको दे देते हैं। उसने कहा बेटा अभी हमको फुर्सत नहीं है तुम लोग बांट करके खा लो बांटो भाई बांट लो जो भिक्षेदारी बांटने की चीज नहीं है तो अभी उसको फुर्सत अभी बांटो लो पीछे हम देखने तब उनकी बात कहते चाहते फिर जब आई बाहर में कहे मैया के राजकुमारी द्रौपदी जगत मारी अर्जुन जीत करके लाया है इसी का अधिकार आप किसी को दीजिए। कहे बेटा बेटा हमने जो कहा दिया कह दिया और पांचों की ये स्त्री बनी तो पांचों की स्त्री सबसे द्रौपदी बनी यही प्रसिद्ध करने लाए ये भी यही प्रसाद नाम है। यहाँ पर नहीं इससे थोड़ी सी दूर पर शिक्षा करके द्रौपदी को सब यहाँ पर
लाया when they were having just 2 days left from their 13 years forest exile, out of which the last year was in a disguised way. So they took, assumed the forms of brahmanas and they went out for begging alms for bhiksha so that nobody can identify who they are. This was just last 1 or 2 days and if Duryodhan finds out that these are Pandavas, Arjun, Bhishma and others, then they will again have to accept foreign exile for another 13 years, 12 years in a simple way and 1 year more in a disguised way. So now they were cheerful and they were begging alms. Nearby to this place is the city of Drupad. So all of these five brothers, they went to that city and they went there and they saw that in the royal assembly there was one very nice occasion where things were being performed, and this was the occasion was a marriage arrangement for Draupadi. At that time it was arranged in such a way that they made one arrangement. In that arrangement, if anybody shoots the eye of a fish which was hanging on a wheel which was at a quite distance from which was probably at a good height that is difficult to see, and that wheel was moving around and the fish was also moving and
fish was hanging
on the wheel
on the fish
underneath that wheel they had kept oil and in this oil reflection of that fish was there but the wheel is moving and the fish is also moving
on the top of that. नहीं ऐसे हो रहा है मछलियाँ मछली की आंखियाँ है और उसमें आरे होते हैं इसलिए वो आरे आ जाएंगे ना उसके बीच में जो लकड़ी होती है ना 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 वो घूमने से यदि मारोगे भी तो वो घूमने लगेगा उसको मारना पड़ा पड़ेगा
So this wheel was moving but the fish was still and underneath this wheel they had kept this oil so the reflection of this fish was coming in this oil. So anybody who will see that reflection in that oil and then shoots the
eye of that face will be able to center of the eye, just in the center of the eye, if he is able to shoot, then he will be able to marry Draupadi. So all of the great archers of that time were present, and they were great warriors also, and they were trying one after another. Duryodhan had already failed, and he was feeling ashamed, and his head was down and was sitting. Then when no one was coming up, then Bhisham, he stood up, Bhisham Pitama, and he wanted to shoot them.
And when I will come back to Draupadi, then I will marry Duryodhana. So for this we
So with this desire, when he got up to shoot the fish, Draupadi, with very firm, very firmly she stood up and she asked, will you marry? And if you're not going to marry, he refused, he said, no, I'm not going to marry. So then you should sit down, you should not get up. Now, Kurna was also sitting there, and he thought, now I should try. And as he stood up,
Kurna
was also capable to do that. So Draupadi knew this. So again, she was very firm in her approach, and she said, who you are? What is your dynasty? You are a son of a maid servant. I cannot marry you. I can only marry Kshatriyas.
They asked him that, who is your father? What is your dynasty? He knows he was trying to hide it.
Chariot driver.
But I thought he said, I am the son of chariot driver. So, and all you have. I cannot marry with you. Like a person, Shudra, I cannot. Then they become so much attempt and this is not. And he made up his mind that I should take a revenge. That is why he was like that.
Now Krishna, Baldev was also sitting at the in that assembly, and Baldev, he pointed Krishna to get up and shoot the fish, and Krishna was smiling and he said, no, I won't do it, one of my devotees should come and we should give this honor to my devotee. And then in a very hinted way, he hinted Arjun, who was present in the form of Brahman, to stand up and shoot the fish. So now in the middle of the assembly where all these great, great warriors and the Kshatriya kings are sitting, this very handsome, youthful Brahman gets up, whose complexion is like Krishna, and Jewish complexion, he gets up, and it's just in the form of Brahman, so they're thinking, oh, what this Brahman will do? But when Arjun came to this spot, and in a very expert way, he took his bow and arrow, and he shot the eye of that fish, and the fish fall off. And then Draupadi came out, and she garlanded Arjun, and they were married. Now what happened?
Not married.
She did garland it Arjuna, but the marriage ceremony was not yet performed. So all these five brothers, they took Draupadi back to their place, and Kunti Devi was cooking at that time, and she was in the room, and her back was towards the door, entrance door. So these five brothers, they came, and then they stood outside the door, and they called out for Kunti Devi, and they said, oh mother, we have brought this bhiksha. They considered Draupadi as bhiksha, today's bhiksha. So they said, we have brought this bhiksha, so you please take this. Now Kunti Devi, she said, well, you should distribute among yourself, divide equally five parts and take it. And then they said, mother, you should see who is, she is Draupadi, and Arjun has won her in the swamvar. That is, he shooted that fish in that assembly, and that's how he was able to get Draupadi. But Kunti Devi said, now I cannot do anything. I have given this word, so you must divide among yourself. So I cannot take my words back. So then, Draupadi became the wife of his five brothers. This was another wonderful pastime which took place.
There are so many wonderful pastimes here of Krishna, but time is not. So gradually, now we'll glorify Srimati Radhika here because it is Parthana. And there are so many places. From tomorrow, we will glorify all these past times of Krishna and Radha. Go, Brahma.